ओम शांति। स्वागत है आप सभी का बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में। साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब का। ओम शांति भाई साहब।
ओम शांति।
आपके द्वारा हम बाप दादा की मदद की बहुत ही अविस्मरणीय विचित्र घटनाएं याद कर रहे हैं भाई साहब। और आज एक घटना याद आती है, जैसे आपने पहले भी बताया हुआ है कि बाबा के सभी बच्चे और सभी बच्चों को बाबा एक ना एक बार संगम युग पर अवसर ज़रूर देते हैं कि मेरे घर में आओ, मेरा परिचय लो, मेरा परिवार देखो। ऐसे ही बाबा ने इस जगत के जो गणमान्य व्यक्ति हुए, जिनको हम VIPs कहते हैं, उनको भी बहुत अवसर दिए। ऐसे ही पॉलिटिकल क्षेत्र के आप क्योंकि सेवाएं करते हैं, तो जो नाइन्थ PM थे भारत के, PV नरसिम्हा राव जी, 1991 से 1996 तक, तो वो भी माउंट आबू आए थे। तो उनका आना कैसे संभव हुआ, उसकी कुछ अगर आप हमको आज बातें बताएं तो।
जी, ऐसा है कि अन्य लोगों का माउंट आबू आना फिर भी इजी होता है। जैसे बड़े बड़े डिग्नेटरीज हैं
जी,
राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, चीफ जस्टिस हैं आदि, जजेज हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है देश का, वो बहुत ही बिजी व्यक्ति होता है
जी।
वास्तव में उसके पास ही रियल पॉलिटिकल पावर होती है, उसके सारे देश के कोने कोने का संभालना पड़ता है। कभी भी कहीं भी कुछ हो जाता है, कई बार प्राइम मिनिस्टर को स्वयं तुरंत जाना पड़ता है, कोई ऐसी घटना हो जाती है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर का पूर्व निश्चित प्रोग्राम में आना, हम उनको कहें कि जी आज से 3 महीने बाद या 2 महीने बाद एक कार्यक्रम है, इस डेट का उसमें आप आइए, तो निश्चित कर ही नहीं सकते। अच्छा, फिर अगर निश्चित हो भी जाए तो कोई भरोसा नहीं है, एन मौके पर उनको कुछ ऐसी बात आ जाए। तो मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क प्राइम मिनिस्टर का माउंट आबू ले जाना, दिल्ली के दिल्ली में फिर भी आ जाएंगे, लेकिन माउंट आबू ऐसे करके ले जाना, क्योंकि हमें भी उनके लिए ऑडियंस चाहिए होता है। तो जब वो आते हैं तो हम भी देश भर के अपने भाई बहनों को निमंत्रण देते हैं, खास खास मौका होता है, वहाँ के गणमान्य व्यक्तियों को भी निमंत्रण देते हैं। तो इस प्रकार का ये सिचुएशन था, तो इसलिए उनका आना बाबा ने ही संभव कराया
जी। तो किस प्रोग्राम के निमित्त भाई साहब, ये जनरल विजिट थी?
हाँ, पहली बात तो ये है कि हमारे वो संपर्क में कैसे आए।
जी,
तो नरसिम्हा राव जी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ वरंगल शहर है, जहाँ के एक भाई थे, मधुबन में भी आते थे और अपने काम से दिल्ली भी आया करते थे, उनका नाम था लोहाटी जी, और वो मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे अपने वारंगल के। उनका नरसिम्हा राव जी से अच्छा परिचय था, तो पहली बार जब हमारा परिचय उनसे हुआ तो लोहाटी जी के द्वारा हुआ। लोहाटी जी दिल्ली आए, हमने उनको कहा और वो हमको उनके घर ले गए और मुलाकात कराई, तो प्रथम मुलाकात इस तरह हुई थी।
तो उस समय वो PM थे?
नहीं, PM नहीं थे, नरसिम्हा राव जी ने बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ संभाली थी
जी।
जैसे बड़ी बड़ी जितनी भी मंत्रालय हैं, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इस तरह से उन्होंने मिनिस्ट्रियाँ संभाली थी। तो हम वक्तन वक्तन उनसे मिलते रहते थे, ख़ास तौर पे रक्षाबंधन का मौका तो हमारे पास होता ही है बहनों के पास, और बीच में भी कभी कोई मौका लग जाए, उनका जन्मदिन आ जाए या कुछ ऐसा हो, हम मिलते थे। तो लास्ट मिनिस्ट्री उन्होंने पहले जो मिनिस्टर बने वो HRD मिनिस्टर बने, फर्स्ट मिनिस्टर। वैसे लास्ट मिनिस्ट्री जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने बनने से पहले संभाली थी, वो शायद होम मिनिस्ट्री थी। तो जब HRD मिनिस्टर बने थे तो हम उस मौके पर उनसे मिलने गए थे, और वो हमें सीधा ही इनफॉर्मली अपने घर में बुला ले, अंदर बुला लिया करते थे। तो बोले, अपने आप बोले
जी,
देखो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, इसको HRD मिनिस्ट्री बना दिया है, पहले तो समझना पड़ेगा कि HRD क्या है। हम ऐसा बोल रहे थे, यद्यपि वो बहुत ही लर्नेड व्यक्ति थे और वो उनके लिए मशहूर था। ऐसा प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं, ऐसा नेता कभी नहीं हुआ जो 17 लैंग्वेजेस जानता हो।
अच्छा।
मोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेजेस को जानते थे। उनकी अपनी मदर टंग तो तेलुगु थी, लेकिन मराठी में भी भाषण करते थे। मराठी एसोसिएशन के एनुअल डे पर मराठी में भाषण किया था और कई विदेशी भाषाएं भी वो जानते थे। तो कुल मिलाकर जो व्यक्ति 17 भाषा जानता हो वो कितना लर्निड होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि उस चीज़ की महीनता को जानना चाहते थे, HRD क्या होता है, क्योंकि पहली बार एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है कि ह्यूमन रिसोर्स को क्या डेवलप किया जाता है, एजुकेशन तो अलग चीज़ है
जी।
और आजकल भी एक नई जो गवर्नमेंट है वो उसको रिवर्स करवाना चाहती है, खैर ये अलग विषय है
जी।
तो हम उनसे मिला करते थे, तो लाहौटी जी के थ्रू ही हमने उनको माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। और लाहौटी जी उनके बहुत क्लोज थे और हम भी उनसे कई बार मिल चुके थे, इसलिए उन्होंने वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया।
तो लोहाटी जी से हमारा संपर्क कैसे हुआ?
वो बीके थे।
अच्छा,
वो बीके थे और वो क्योंकि मर्चेंट ऐसे तो दिल्ली का उनका आना जाना होता था, माउंट आबू भी जाता, एज ए बीके उनका उनसे कनेक्शन हुआ था
जी।
और वही हमको उनसे इंट्रोड्यूस कराने ले गए थे। अब उनके कहने पर तो नरसिम्हा राव जी ने एक डेट भी फिक्स कर दी जो उनको कन्वीनियंट खाली दिखी, सब तय हो गया। फिर भी हमें शक था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, तो हमको पता है प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम तो सुबह और शाम में, अभी दिल्ली में अभी गुवाहाटी में होंगे, कुछ भी हो सकता है, तो होना तो वहाँ। फिर हैदराबाद में एक और हमारे बीके भाई थे, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, KVK राजू, वहाँ के प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट थे और नागार्जुना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के वो चेयरपर्सन थे। और नागार्जुना हिल्स भी है, वहाँ उनका हेडक्वार्टर था और एक नागार्जुना फर्टिलाइज़र बहुत प्रसिद्ध उन्होंने कंपनी बनाई थी, उसके भी चेयरमैन थे। वो अच्छे बीके थे और बहुत सारे क्वालिटी प्रोग्राम जो वहाँ कराते रहते थे। तो हमने उनको कहा कि देखिए इनको हमने फिक्स तो कर लिया, लेकिन इनको लाने तक आपने जिम्मेवारी लेनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है।
तो फिर जैसे सहज हमको मिल गई डेट, तो सहज ही आए, कोई परीक्षा तो आई होगी बाबा के
जरूर
कार्य में।
क्योंकि ये परीक्षा नेचुरल हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे और परीक्षा आ गई। वो ये हुई कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम वगैरह की तरफ कुछ हलचल हो गई थी, तो प्राइम मिनिस्टर को फौरन वहाँ जाना था और वो डेट्स ऐसी थी कि उनके आने तक हमारी डेट आ जाती थी। तो हमने फिर KVK राजू को कहा कि भाई इस सिचुएशन को आपने संभालना है, कुछ ना कुछ करके, अब उनका फिक्स है, वो भी अपनी डेट्स को ऑनर करते हैं, लाना है। तो उसी कारण से KVK राजू जी ने उन पर प्रवेल किया कि भाई ठीक है आप अपना वो करिए, लेकिन इस डेट का ज़रूर ध्यान रखिए, आपको आना ही है। तो जब वो आ गए तो मैंने KVK राजू जी को कहा, हम पांडव भवन के लॉन में बैठे थे, तो मैंने कहा देखिए आप आखिर आप इनको ले ही आए
जी।
तो मुझे बोले यू हैव प्रेस द राइट बटन, उन्होंने मुझे ये कहा था। अच्छा, तो खैर नरसिम्हा राव जी आए तो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सारा उनका नगर में प्रसिद्धि हो गई और जब वो उतरते हैं अपने हेलीपैड पे सारा वो हुआ। अब था उन्होंने जो प्रवचन किया, तो नरसिम्हा राव जी ने स्टेज से कहा कि कोई और होता
जी।
तो मेरा पीछा छोड़ देता
जी।
आशा बहन का नाम लिया
जी।
ये आशा जी हैं, ये मेरे पीछे लगी ही रही, नहीं तो कोई सोचता चलो छोड़ो इसको नहीं आता, पर ये लगी रही, ये बहनें बड़ी हठीली हैं।
अच्छा,
अच्छा उसने बोला। अच्छा, उसके बाद उन्होंने भाषण किया तो क्या ब्रह्मा कुमारी की तारीफ की, वो तेज दिमाग के थे, कहते हैं जो काम सरकार को करना चाहिए वो ब्रह्मा कुमारी कर रही है, सरकार नहीं कर पा रही, और मैं यहाँ से डिक्लेयर करता हूँ इस कार्य में इनको किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए तो हमारी गवर्नमेंट देगी। ये उस समय के मुताबिक बहुत इम्पोर्टेंट, एक प्राइम मिनिस्टर का एंडोर्स करना और ऑफर करना बहुत बड़ी बात थी।
तो ऐसी क्या बातें उनको लगी हमारे कार्य में जिनके लिए उन्हें ऐसा?
क्योंकि वो हम उनसे मिलते भी रहते थे
जी।
और केवी के राजू जैसा व्यक्ति ब्रह्मा कुमारीज में आता है, ये भी उनको उसका प्रभाव था। लोहाटी जी भी उनको जानते थे और कहीं ना कहीं ब्रह्मा कुमारीज का दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर कोई ना कोई कार्य प्रचलित होता था, उनको क्यूरियोसिटी भी रहती थी ये कौन है इस प्रकार के। यानी हमारी तो पूरी स्पिरिचुअल आर्मी है ना, और हम किसी से डोनेशन नहीं लेते और सेवा ही सेवा करते हैं और बहनें करती हैं, तो सबको ऊपर कहीं ना कहीं मिलती भी ज़रूर है उनसे। किसी अपने नगर में जाएंगे तो वहाँ बहनें राखी बांधने आएंगी, इस तरह से था। ये राखी का सिस्टम भी शिव बाबा ने ऐसा रखा हुआ है, और किसी काम के लिए कोई अपॉइंटमेंट दे ना दे, और राखी हमारी बहनें स्नेह से मनाती हैं, स्पिरिचुअल ब्रदरहुड से मनाती हैं। हमारी बहनें तो जेलों में भी जाके कैदियों को राखी बांधती हैं, वो रो पड़ते हैं कि देखिए हमें कौन दुनिया में हमें यहाँ रखा हुआ, हमारी बहनें नहीं आ सकती, ये बहनें आती हैं। तो वो भी एक बाबा की मदद रहती है, मिलने की एक ओकेजन रहता, उसमें कोई ना नहीं करता कि आप ना आइए। अच्छा, अब जब उन्होंने स्पीच करी तो ये जो स्पीच होती है प्राइम मिनिस्टर की, ये एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, DAVP, वो उस स्पीच को फुल छापता है और उसकी एक सर्टेन नंबर ऑफ कॉपीज छापता है, और वो खुद उनका नियम होता है कि कहाँ कहाँ, जैसे सभी गवर्नर्स को जाएगी, सभी VIPs को, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है तो वो उनका डिपार्टमेंट होता, तो उन्होंने उनकी स्पीच छापी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि भाई गवर्नमेंट का काम आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं कर सकती वो आप काम कर रहे हैं, और हमारी सरकार आपको हर प्रकार का सहयोग, उस वक्त ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो हमने फिर डिपार्टमेंट ऑफ DAVP को अप्रोच किया, हमने कहा इन्होंने हमारी संस्था के लिए स्पीच किया है, हमारी संस्था का इसमें बहुत लाभ है, आप इसकी 3,000 कॉपीज और छपवा दीजिए। तो डिपार्टमेंट वालों ने भी एग्री किया, वो 3,000 कॉपीज फिर हमने मंगवाई अपनी तरफ से, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर्सन थे उनको भेजी। उस समय ये बहुत प्रेस्टीज की लाइब्रेरी में रखने जैसी चीज़ हमारी हो गई थी।
तो भाई साहब जब वो आए होंगे और मधुबन में सारा देखा होगा, दादियों से मिले होंगे, तो उस समय कोई विशेष बातचीत हुई उनकी?
हाँ, मतलब वो सब दादियों से वहाँ पहले तो मिले ही नहीं थे, सारा कैंपस देखा, फिर उन्होंने कहा ये हेडक्वार्टर है जहाँ से सारे प्रांतों में, सारे भारत में लोग जाते हैं। कुछ उन्होंने इंक्वायरीज की आपका सिस्टम कैसे चलता है आदि, तो बहुत खुश थे, अति खुश थे, और वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आए थे
जी।
तो उस प्राइम मिनिस्टर के आने से सारा अमला जो होता है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन राजस्थान की, वो हिल जाती है, वो सारा ट्रैफिक रोक देखते हैं, यहाँ तक कि हमको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्पेशल पास दिया जाता है, बैज दिया जाता है, हर तरफ खुफिया पुलिस खड़ी रहती है, पूरा हमारा हेडक्वार्टर किला बन जाता है, टॉप पर भी वो लोग खड़े रहते हैं गन लेके, एक विशेष माहौल बन जाता है। प्राइम मिनिस्टर का जाना, मैंने एक सबसे बड़े नेता का वहाँ पर जाना
जी।
तो ये हमारे साथ हुआ था।
और कहीं ना कहीं भले जो लोग वहाँ फिजिकली मधुबन नहीं पहुँच पाए, हमारे ब्राह्मण बच्चे अपनी जगह पे रह करके भी वो उमंग की लहर वहाँ तक भी चलती है।
हाँ, और लगातार न्यूज उनको दी जा रही थी कि भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, क्या हो रहा है, क्या, तो सारे वर्ल्ड में एक प्रकार की लहर फैल गई थी कि भारत का प्राइम मिनिस्टर ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में आया। जैसे यूं समझिए कोई कहे अमेरिका का प्रेसिडेंट ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर आया, इस तरह का वातावरण था।
और भाई साहब उनके कार्यकाल के दौरान, क्योंकि वो इतना प्रभावित थे संस्था से, मधुबन भी आए, मिले, देखा और खुद अपनी स्पीच में वो कहा, तो उनके कार्यकाल में कोई विशेष उन्होंने सेवा की, कोई विशेष उपलब्धि हुई?
नहीं, ये तो ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम चलता है तो उसमें जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, वैसे वो हर मिनिस्ट्री में रहे थे, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे
जी।
बिल्कुल सादा रहते थे, तो उनके कार्यकाल में एक बात ये हुई थी कि उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे
जी,
उनको उन्होंने अपने मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था और डॉक्टर मनमोहन जी बड़े लर्निड व्यक्ति थे, कई देशों में घूमे थे, तो उन्होंने जिसको कहते हैं ना फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, एक दूसरे तरीके के फाइनेंशियल सिस्टम को लागू किया था। तो नरसिंह राव जी ने उनको सिलेक्ट किया था। उस वक्त कई लोगों के आईब्रोज भी उठे थे, इन्होंने इनको कैसे बना लिए, तो नए सिस्टम के हैं। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, फिर मनमोहन सिंह जी ने 5 साल इनकी गवर्नमेंट चली तो बहुत सारे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स वो लाए थे, एक सारे देश में प्रसिद्ध घटना हुई थी
जी। हाँ जी, और भाई साहब इसमें आपको बाप दादा की मदद कैसे दिखाई देती है?
ये तो देखिए ना, सीधी सीधी बाप दादा की मदद है
जी।
कि किसी प्राइम मिनिस्टर का एक ऐसे स्थान पर जहाँ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं है, जो जिनका कोई ब्रह्मा कुमारी का डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर के साथ, है ना, प्राइम मिनिस्टर को मुश्किल से अप्रोच लोग करते हैं जाके एक 5 मिनट के मिलने के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर चलकर माउंट आबू आ जाए और उस डेट पर रह भी जाए, वो डेट भी कायम रह जाए, तो इसमें देखो परमात्मा ने पहले लोहाटी भाई को निमित्त बनाया
जी।
हमारा उनसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। अच्छा, फिर वो हम उनसे मिलते रहे तो थोड़ा हो जाता है ब्रह्मा कुमारी का कुछ, हम ऑन गोइंग एक्टिविटीज उनको बताते रहे। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐन मौके पर उनका नॉर्थ ईस्ट में जाना था तो KVK राजू भाई ने, बाबा ने उनके द्वारा मदद करवाई, कि KVK राजू भाई ने प्रवेल अपॉन किया, वो वहाँ पर आए। तो हर चीज़ में आप देखेंगे बाबा ने ही उनको वहाँ लाना था, वो आए
जी। तो फिर वो गुवाहाटी की विजिट का कुछ पता चला हमें?
अच्छा, नहीं, उन्होंने अपना काम कर लिया। उसके बाद माउंट आबू में कोई प्राइम मिनिस्टर ना पहले गया उनके ना बाद गया। गवर्नर आए हैं, प्रेसिडेंट्स आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स आए हैं, चीफ जस्टिस, क्योंकि इनका पोस्ट ही ऐसा होता है। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आए हैं, लेकिन वो भी बहुत एक बाबा की एक प्रकार की प्लानिंग के अनुसार आए। एक दवे गौड़ा थे, HD दवे गौड़ा, वो कर्नाटक के बिलोंग करते थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे दिल्ली में। उनको भी हमारे फंक्शन में बाबा ने कैसे युक्ति रची कि वो आगे, एक वहाँ स्वामी जी होते थे कर्नाटक के प्रसिद्ध स्वामी जी, उस स्वामी जी का ब्रह्मा कुमारी से कनेक्शन रहता था और स्वामी जी ने इतने हॉस्पिटल, इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहाँ खोले हुए थे, इसके लिए वो प्रसिद्ध थे। थे वो स्वामी जी, लेकिन एजुकेशन का प्रचार करना और उस कर्नाटक गवर्नमेंट से एड भी लेते थे, बहुत बड़ा उनका मठ था
जी।
और हम सब गण्य मान्य व्यक्ति उनको जानते थे, तो दवे गौड़ा जी उनके शिष्य थे। अच्छा, नेचुरली तो दवे गौड़ा, जब वो दवे गौड़ा जी दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बने तो हमको स्वामी जी जानते थे। तो हमने उन स्वामी जी को बुलाया दिल्ली में, सम्मान दिया, अपने सेंटर पे रखा, उनको कहा कि देखिए हमारा एक बहुत बड़ा फंक्शन है उसमें इंदिरा गांधी स्टेडियम में, तो आपको प्राइम मिनिस्टर को लाना है उसमें। बोला मैं लाऊंगा, मैं खुद भी आऊंगा। तो उन्होंने युक्ति करके, वो भी फिर गुरु के कारण, भावना के कारण उन्होंने टाइम निकाला और लोकल था दिल्ली का, दिल्ली में, इसलिए वो वहाँ आए। वरना प्राइम मिनिस्टर का आना मैंने बहुत ही मान भी ले तो भी अंत में नहीं हो पाता, तो बाबा ने ये किया था, ये इस प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। किसी भी दुनिया में, किसी भी जगह देख लो, कोई धार्मिक संस्था में एक प्राइम मिनिस्टर चला जाए, है ना, एक तो ना सार्वजनिक सर्वमान्य कोई संस्थान है, मान लो गांधी का पीस फाउंडेशन है, वहाँ से उनको वो लोग जाते हैं अपनी पार्टी के कारण, कोई संगठन के कारण, लेकिन एक वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो अभी इतनी पॉपुलर भी नहीं है, वहाँ पर बाबा ही उनको ला सकता, उसके साथ संस्था का स्टेटस बढ़ता
जी। और कहीं ना कहीं भाई साहब जिनकी हम सेवा करते हैं, कहीं ना कहीं दुनिया तो छोटी है, कहते दुनिया गोल है, तो वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा हम ऐसे आत्माओं से भी संपर्क में आ जाते हैं और हमें उनकी कहीं ना कहीं पीठ करते रहनी चाहिए,
यानी हर एक चीज के पीछे बाबा है
जी।
हमने ये देखा अगर बाबा ना हो तो ये कार्य हम लोग नहीं कर सकते
जी। तो भाई साहब ये प्राइम मिनिस्टर बने, उसके पहले भी तो कई सारे पोजीशंस इन्होंने होल्ड किए होंगे, वहाँ भी हमारा संपर्क रहा उनसे रेगुलरली।
देखिए ऐसा है जैसे हमने बताया कि ये जरूरी नहीं होता, हम तो जो हमारे संपर्क में है वो बता रहे हैं
जी।
इन चीज़ों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में आने से पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वो बहुत मशहूर थे जब वो मिनिस्टर के तौर पे काम करते थे, शायद राजीव गांधी की गवर्नमेंट होती थी
जी।
तो आप देखिए कि सबसे प्रसिद्ध मिनिस्ट्रियाँ जो आज भी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में जाएं जहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठता है, उसके इर्द गिर्द जो मिनिस्ट्रियाँ होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री
जी,
जो सारे अन्य देशों के साथ भारत का संबंध रखती है, एक होती है होम मिनिस्ट्री जो सारे देश का सारा प्रबंधन करती है, एक होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, और ये तीन होती है, एक और होती है
डिफेंस
मिनिस्ट्री। तो ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, ये होम मिनिस्टर भी रहे, ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रहे। अब मुझे याद नहीं कि फाइनेंस मिनिस्टर रहे या नहीं रहे, लेकिन इन्होंने मनमोहन सिंह फाइनेंस वाले को बुलाया, तो चारों बड़े बड़े डिपार्टमेंट को इन्होंने संभाला प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। इससे पहले ये अपनी स्टेट आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे
जी।
वो भी एक हेड होता है अपनी स्टेट का, चीफ मिनिस्टर ही फिर सेंटर में आते हैं। अब अगर आप इसका इतिहास देखें, हमसे तो इनको लोहाटी जी ने मिलाया, लेकिन उससे पहले भी जितनी मिनिस्ट्रियों में ये रहे हैं तो कोई ना कोई सेक्रेटरी, कोई ना कोई व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड होता है। अच्छा, और फिर आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में ब्रह्मा कुमारी के बहुत सारे सेंटर हैं। आंध्र प्रदेश में आज तो दो स्टेट्स बन गए उसके, तेलंगाना, अनेक सेंटर हैं, और आंध्र प्रदेश का एक अपना इतिहास है ब्रह्मा कुमारी के कनेक्शन में। अगर मैं यूं कहूं तो ये कोई एक्सेस नहीं होगा कि आंध्र प्रदेश ने ब्रह्मा कुमारी को इतना अपलिफ्ट किया है, इतना सपोर्ट किया, पता नहीं क्यों, ये आप समझिए कि मैं बयान नहीं कर सकता
जी।
आंध्र प्रदेश से अगर मैं मुझे याद है तो सबसे पहले एक बी गोपाल रेड्डी होते थे
जी,
वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे। तो प्रथम बार अगर कोई वीआईपी माउंट आबू में आया है तो बी गोपाल रेड्डी आए हैं। अच्छा, उसके बाद एक और होते थे जो यूपी के बहुत सारे गवर्नर आंध्र प्रदेश से लिए जाते थे।
अच्छा,
हाँ, तो वो जो थे जिनका मैंने सुनाया था आगरा में गवर्नर को बहन जी ने वो कर दिया था, फोन किया था
जी।
तो वो गवर्नर, उसका मैं पूरा नाम मुझे अब याद नहीं है, वो भी आंध्र के थे। इसके बाद डॉक्टर चन्ना रेड्डी जो के राजस्थान के गवर्नर रहे, जिन्होंने हमें ज्ञान सरोवर दिलाया, वो भी आंध्र के थे
जी।
मैंने देखा है कि अनेक आंध्र वालों ने, अच्छा होम मिनिस्टर भारत के वो भी आंध्र के थे, और उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की थी
जी।
तो कहने का भाव ये एक प्रांत ही ऐसा होता है जो ब्रह्मा, या कहाँ आंध्र के लोग कहाँ ब्रह्मा कुमारी, लेकिन वो प्रांत ही ऐसा होता।
ये भी विशेष पार्ट है, तो गवर्नमेंट के अंदर भी और बाबा के यज्ञ में भी उनका विशेष योगदान रहता है। अभी
मुझे याद है कि भारत के यंगेस्ट MP जो थे वो भी आंध्र के थे, और सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी में दिल्ली में आए, और उन्होंने हमारे फर्स्ट बड़े प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया था। अब मुझे उनका नाम याद नहीं है। अनेक बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, भारत की लॉ सेक्रेटरी लेडी वो भी आंध्र की थी। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जितना आंध्र प्रदेश के लोगों ने सपोर्ट किया ब्रह्मा कुमारीज को, शायद किसी ने नहीं किया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली।
जी,
ये भी एक होता, स्थान का भी प्रभाव होता,
धरनी वहाँ की ऐसी होगी थोड़ी सी, और वैसे भी भावना प्रधान धरनी है साउथ में थोड़ा, इस हिसाब से भी
वहाँ के लोग मांसाहारी होते हैं, उसके अलावा बहुत ही नेक दिल होते हैं। तो हमें याद है आंध्रा के किसी ऑफिशियल ने हमें बुलाया था किसी प्रोग्राम में, कोई खास दिन था, शायद राखी बांधने गए थे
जी।
तो उस दिन उसके घर में सारे आंध्रा के ऑफिशियल्स का जो दिल्ली में रहते हैं भोजन था। तो हम लोग पहुँचे तो भाई बोला कि बहन जी पहले आप राखी बांध लो, इसके बाद हमारा भोजन भोजन शुरू होने वाला, वो ठीक नहीं है, उसने बोला
जी।
तो सचमुच फिर बहनों ने राखी बांधी, औरों ने भी वहाँ उनको बांधने गए थे, कई आए हुए थे, बांधी, उसके बाद उन्होंने अपना भोजन शुरू किया। तो हर एक जगह का ये होता है
जी।
लेकिन दिल के बहुत नेक और धार्मिक रुझाव उनका ऐसा, ये नहीं कि भाई ये नॉर्थ इंडिया की संस्था है या नहीं, बहुत प्यार से उन्होंने, अभी मुझे पूरे नाम याद नहीं, अगर मैं याद करूं तो रिकॉर्ड है उनका
जी। अभी भी वर्तमान में भाई साहब जो हमारा लाल किले पर योगा डे का प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट आए थे वो भी कहीं ना कहीं कनेक्शन,
भारत के वाइस प्रेसिडेंट आज के जो हैं वेंकैया नायडू, वो भी आंध्र प्रदेश के हैं और बहुत सहज स्वभाव से, हम उनको मिलने गए, हमारे प्रोग्राम में आकर उन्होंने प्रेजाइड किया, उसके बाद माउंट आबू भी गए, तो ये उनका एक नेचुरल स्वभाव है
जी। तो विशेष योगदान धरनी का भी मिलता है, और धरनी पे जरूर बाप दादा की नजर, बाप दादा के कुछ बच्चे योग के वाइब्रेशंस जिन्होंने उस धरनी को सॉफ्ट बनाया और फिर वो पूरे यज्ञ में उसकी खुशबू फैलती है।
मुझे याद है कि जिन केवी के राजू का मैंने जिक्र किया
जी,
तो वो उन्होंने सबसे पहले, वो वहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो वहाँ एक हैदराबाद में कंट्री क्लब है, वो बहुत मशहूर है, जिसमें टॉप क्लास के लोग वहाँ के आते हैं, इनकम टैक्स एडवाइज़र एक यशस्वी होते थे बहुत टॉप क्लास के। तो उन्होंने, हमारा एक भाई था ब्रायन बेकन
जी,
वो ऑस्ट्रेलिया का था और वो मोटिवेशनल स्पीकर था और ऑथर ऑफ बुक्स था, तो उन्होंने ख़ास तौर पे उसको बुलाया था और बुला करके कंट्री क्लब में पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, क्रीम जेंट्री जितने शहर के बढ़िया लोग हो सकते हैं आए, मुझे, मैं भी वहाँ गया था
जी।
मैं माउंट आबू की तरफ से गया था, तो ब्रायन बेकन, वो हम दोनों को बारी बारी भाषण करना होता था
जी।
तो ब्रायन बेकन ने अपने हिसाब से एक एस कर्व होता है, तो एस कर्व पर भाषण किया। अच्छा, तो मैं तो सिंपल व्यक्ति था, मैं तो ज्ञान के हिसाब से बोलता था, जब मेरी टर्न आई तो मैंने कहा आपने कभी ओ कर्व सुना है, तो सारे हंसने लगे, मैंने कहा मैं आपको ओ कर्व पर सुनाता हूँ, फिर मैंने सृष्टि चक्कर का ज्ञान दिया था, सब बहुत खुश हुए थे। तो कहने का भाव ये, केवी के राजू ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम ब्रह्मा कुमारी से करवाए वहाँ जब तक वो जिंदा थे, और उनका एक गेस्ट हाउस था बॉम्बे में
जी।
वो भी उन्होंने ब्रह्मा कुमारी को यूज़ करने के लिए दिया हुआ था, वो किसी हार्ट अटैक से उनका शरीर छूट गया था, लेकिन बहुत ही डेडिकेटेड, हाईली प्लेस्ड। मुझे याद है एक बार हम इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट से मिलने गए थे, उनके द्वारा ही टाइम लिया था, तो एक कार में उन्होंने खाली एक बुके रखा हुआ था, इतना बड़ा बुके, वाइस, उनका स्टाइल भी था वो भी मुझे याद है, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या, तो उसको सारा स्टाफ उठ के खड़ा हो जाएगा, एक बुके दो आदमी उसको अंदर ले जा रहे, तो ये थे।
और उन्होंने भी अभी जो हमारा नागार्जुन मैनेजमेंट सेंटर चलता है और जो बिजनेस इंडस्ट्री विंग की सेवाएं हैं,
उन्होंने अपना एक स्थान दिया हुआ था ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर के लिए, फिर उनका बेटा है के एस राजू, उसने टेक ओवर किया, वो भी ब्रह्मा कुमारी का बहुत सपोर्टर है, वो इतना डीप नहीं है जितने वो थे, वो तो बहुत डेडिकेटेड थे, लेकिन वहाँ हमारा ब्रह्मा कुमारी के अंदर चलता है
जी।
हाँ जी,
तो बहुत विशेष भाई साहब, बाप दादा ने कैसे आत्माओं की बुद्धि को प्रेरा, उनको उनका भी कल्याण किया, और उनके द्वारा कहाँ ना कहाँ, जैसे आपने कहा, जड़ें बहुत गहरी होती हैं, हमें नहीं पता हम जिनकी सेवा कर रहे हैं आगे चल के उस सेवा का क्या स्वरूप निकलेगा। तो इसी प्रकार से बाप दादा के हर चीज़ के अंदर, संगम युग में जो भी ब्राह्मण बच्चे करते हैं, यदि सच्ची दिल से करते हैं और निमित्त भाव से करते हैं, तो वो मेहनत, वो पुरुषार्थ कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं ये पुरुषार्थ, ये मेहनत, ये सेवा फल ज़रूर लाती है और ऐसा यज्ञ में कार्य करा जाती है जिससे कि हर व्यक्ति का भाग्य बन जाता है। तो ऐसे ही बाप दादा की मदद के कई और यादें हम भाई साहब के द्वारा जानते रहेंगे, जिनको आज तक हमने ना देखा, ना जाना, ना सुना। इसलिए आप सभी इस कार्यक्रम के द्वारा भरपूर लाभ लेते रहिएगा। ओम शांति।